जिस तरफ से नूर बाहर निकली थी, थोड़ी ही देर बाद उसी तरफ से अरमान भी निकल आया। उसे भी रेहान ने देखा। रेहान के चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। पहले नूर का आना, फिर उसके पीछे अरमान का आना, रेहान परेशान था। रेहान ने ज़ुबैदा बेगम से हल्के से कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बात कर लूँगा। ये कहते हुए वो भी घर के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो हॉल के पास पहुंचा, उसकी नज़र अंदर बैठी नूर पर पड़ी। नूर चुपचाप सोफे पर बैठी हुई थी। वो उसके पास जाने ही वाला था कि उसी समय सादिया हॉल में आ गई। सादिया की नज़र जैसे ही रेहान पर पड़ी, वो उसकी तरफ बढ़ी। असल में वो काफ़ी देर से परेशान थी। आज उसकी और रेहान की मैरिज एनिवर्सरी थी, मगर रेहान एक बार भी उसके पास नहीं आया था। उसकी ये बेरुखी सादिया को बहुत खल रही थी। इसी वजह से वो खुद उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई थी। वो रेहान के सामने आकर बोली, आपको ताई अम्मी और ताया अब्बू बुला रहे हैं? ये सुनकर रेहान वहीं रुक गया। रेहान सादिया की बात सुनकर वापस हॉल की तरफ चला गया। असल में केक कट करना था और उसके मॉम डैड उसे बुला रहे थे। थोड़ी देर बाद अरमान भी वहां से वापस चला गया। हॉल में अब सिर्फ नूर रह गई थी। वो कुछ देर तक चुपचाप सोफे पर बैठी रही। उसके चेहरे पर गुस्सा और उलझन दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद वो उठी और धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही वो बिस्तर पर बैठी, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने झटके से अपना दुपट्टा उतारा और दूर फेंक दिया। गुस्से और दर्द से भरी आवाज़ में उसने खुद से कहा, क्या समझते हैं वो मुझे, कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूं जो उनकी एक बात पर उनके पास चली जाऊंगी। उसे अरमान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने बेझिझक कहा था कि वो उसे प्रपोज कर रहा है। नूर को ये बात बहुत बुरी लगी थी। जब कोई लड़की किसी लड़के पर इस तरह गुस्सा होती है, तो उसके दिल में कितनी भावनाएं एक साथ उमड़ती हैं। गुस्सा, शर्म, चोट और उलझन, उन सबको शब्दों में पूरी तरह लिख पाना मुश्किल होता है। नूर बिस्तर पर बैठी बस रोती रही। थोड़ी ही देर बाद बाहर से म्यूजिक की तेज आवाज आने लगी। घर में संगीत शुरू हो चुका था। लोग हंस रहे थे, गा रहे थे और डांस भी शुरू हो गया था। मगर नूर का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो बाहर जाए। वो चुपचाप कमरे में बैठी रही। उधर दूसरी तरफ नूर के अब्बा के केस की अगली तारीख लगी हुई थी। उन्हें अगले दिन सुबह किसी काम से उसी शहर आना था। उन्होंने घर पर नूर की अम्मी से कहा, नूर को फोन करके बता दो कि मैं कल आ रहा हूं। अगर उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं साथ ले आऊंगा। नूर की अम्मी सुल्ताना बेगम ने सिर हिलाया, मैंने फोन किया था मगर उसका फोन बंद आ रहा है, शायद सो गई होगी। नूर के अब्बा को थोड़ा हैरानी हुई, इतनी जल्दी? वो तो इस वक्त हमेशा पढ़ती रहती है, सोती कहाँ है इतनी जल्दी? सुल्ताना बेगम ने हल्की चिंता से कहा, हो सकता है आज थक गई हो इसलिए सो गई हो। नूर के अब्बा ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, कोई बात नहीं, अगर उसे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं वहीं जाकर दिला दूंगा। उन्हें क्या पता था कि इस वक्त नूर सो नहीं रही थी, बल्कि अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी और उसके दिल में अरमान की कही हुई बात बार बार गूंज रही थी। पार्टी खत्म हो चुकी थी। रेहाना बेगम और फरीद खान अपने कमरे में आ चुके थे। दोनों ने कपड़े बदल लिए थे और अब बिस्तर पर बैठकर आज की पार्टी के बारे में बातें कर रहे थे। फरीद खान कुछ सोच में डूबे हुए थे। रेहाना बेगम ने ध्यान से उन्हें देखा और पूछा, क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? फरीद खान ने हल्के से सिर हिलाया, नहीं, परेशानी की बात नहीं है, बस रेहान के बारे में सोच रहा था। रेहाना बेगम ने कहा, रेहान कह रही थी कि कल आपको बिजनेस टूर पर जाना है? फरीद खान ने धीमे स्वर में कहा, मैं उसके काम के बारे में नहीं सोच रहा, माहिरा के बारे में सोच रहा हूं, आज उसकी भी मैरिज एनिवर्सरी थी। रेहाना बेगम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ही है कि वो नहीं आई, अगर आती तो जरूर कोई ना कोई ड्रामा करती, उसका स्वभाव तो सब जानते हैं। फरीद खान ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे हमारा बेटा लकी है, उसे सादिया जैसी सुलझी हुई लड़की मिली है। रेहाना बेगम तुरंत बोली, सादिया लकी है, मेरा बेटा जिसकी भी किस्मत में जाता उसकी किस्मत ही बदल जाती। फिर गर्व से बोली, आज के जमाने में ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं, मुझे अपने बेटे पर बहुत गुमान है। फरीद खान उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए, तुम्हारा बेटा मानता हूं कामयाब है, मगर वो कितना अनरोमांटिक है ये भी तो देखो। उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा, वो तो सादिया है जो उसके साथ निभा रही है, इतने ठंडे स्वभाव के साथ अगर कोई और लड़की होती तो शायद निभा ही नहीं पाती, रेहाना बेगम ने कुछ सोचते हुए कहा। और नूर, देखा नहीं तुमने, मेरे बेटे ने नूर जैसी लड़की की जिम्मेदारी भी उठाई हुई है। देख लेना, अब उसे भी संभालना पड़ रहा है। फरीद खान ने गहरी सांस ली। बात तो तुम्हारी सही है, रेहाना बेगम फिर गर्व से बोली। मेरा बेटा हीरा है हीरा, और हीरे को तराशा ही जाता है। दोनों अपने बेटे के बारे में बात करते हुए मुस्कुरा रहे थे, मगर रेहाना बेगम को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा आगे क्या करने वाला है। एक छोटी उम्र की लड़की धीरे धीरे उसके दिल और दिमाग पर इस तरह हावी होने लगी थी कि वो बाकी सब चीजों को पीछे छोड़ने लगा था, और वो लड़की थी नूर। अरमान अपने कमरे में बेड पर बैठा हुआ था। वो कपड़े बदल चुका था, मगर उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसे बार बार वही पल याद आ रहा था जब नूर ने उसकी दी हुई रिंग वापस कर दी थी और उसे बहुत कुछ सुनाकर चली गई थी। उसने झुंझलाकर फोन उठाया। फोन की स्क्रीन पर नूर की फोटो लगी हुई थी। कुछ पल तक वो चुपचाप उस फोटो को देखता रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और फोन वापस रख दिया। उसका दिमाग पूरी तरह नूर के ख्यालों में उलझा हुआ था। उधर नूर भी अपने कमरे में थी। वो कपड़े बदल चुकी थी, मगर अभी भी बहुत परेशान थी। उसकी आंखें रो रोकर लाल हो चुकी थीं। इसी बीच उसके फोन पर अरमान का कॉल आने लगा। नूर ने फोन की स्क्रीन देखी, अरमान का नाम चमक रहा था। कुछ पल तक वो फोन को देखती रही, मगर उसने कॉल उठाया नहीं। थोड़ी देर बाद फोन बजते बजते खुद ही बंद हो गया। नूर की आंखों से फिर आंसू निकलने लगे। उसी समय नूर के कमरे का दरवाजा बंद था, लेकिन बाहर से हल्का सा शोर सुनाई दे रहा था। असल में नूर का कमरा घर के साइड में था। उसका दरवाजा हॉल में खुलता था, मगर उसकी खिड़कियों से लॉन साफ दिखाई देता था। नूर खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। लॉन में फैजान कुछ नौकरों के साथ पार्टी का सामान और साथ सामान इकट्ठा करवा रहा था। घर के बाकी लोग अपने अपने कमरों में जाकर आराम करने लगे थे, मगर फैजान अभी भी काम में लगा हुआ था। नूर कुछ देर तक उसे चुपचाप देखती रही। उसे खुद भी समझ नहीं आया कि उसका दिल अचानक इतना अजीब सा क्यों महसूस करने लगा। उधर दूसरी तरफ रेहान अपने कमरे में बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले थे। वो आंखें बंद किए चुपचाप बैठा हुआ था। उसके दिमाग में बार बार वही पल घूम रहा था जब नूर अचानक उसकी बाहों में आ गिरी थी। उसे अभी भी नूर की खुशबू महसूस हो रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार नूर का चेहरा और उसकी आंखें आ रही थी। उसी समय सादिया कपड़े बदलकर कमरे में वापस आई। उसने रेहान को उसी तरह बैठे देखा। वो हैरानी से बोली, आपने अभी तक कपड़े नहीं बदले? सादिया की आवाज सुनकर रेहान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। रेहान उठकर कपड़े बदलने के लिए अंदर चला गया। कुछ देर बाद वो कपड़े बदलकर वापस आया। वो शीशे के सामने खड़ा होकर अपने बाल ठीक करने लगा। पीछे बेड पर सादिया लेटी हुई थी। वो चुपचाप रेहान को देख रही थी। कुछ पल बाद उसने धीमे से पूछा, आप मुझसे नाराज तो नहीं हैं? रेहान ने शीशे में उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, नहीं।
लेकिन सच ये था कि इस वक्त भी उसका मन कहीं और ही था।